ണമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയിരിയാണം പ്രണമോ വജ്രായാണം പ്രണമോ ലോയേ സംവൃതാവൂനം മംഗളം ഭഗവാന് ഈരോ മംഗളം ഗോത്രം മംഗളം കുരുചന്ദാദ്യോ ജയമോട്ട് മംഗളം സർവ മംഗള മംഗളം സർവ കല്യാണ കാരികം പ്രധാനം സർവ ധർമാണാം ജയനം ജയതി ശാസനം നമഃ സമയ സാരായ സ്വാമി ഭൂത്യാചകാസതേ വിശ്വഭാവായ ഭാവായ സർവ ഭാവാന്തര ചിതേ ग्रंथाधिराज समयकार जी है भरत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए मानो इस अपूर्व ग्रंथ की रचना हुई हो। एक एक गाथा हृदय की गहराई में बैठकर लिखी गई है, अंदर से निकली है बात। शब्द भले ही जड़ हो, भाषा पुद्गल है, भाषा वर्गणाएं जड़ हैं, लेकिन फिर भी उन भाषा वर्गणाओं में इतनी सामर्थ्य वर्तती है कि वो चेतन का स्वरूप बतला सके,
जागृत करता
है, जागृत करते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो भी शब्द ऐसे भी होते हैं जो मानो अनुभव से नजदीक होकर के निकलते। तो आचार्य कुंद स्वामी के ये शब्द जड़ कह करके हम इनको छोड़ दे रहे, ऐसे नहीं है। भले ही शब्द जड़ हो, शब्द अचेतन हो, लेकिन चैतन्य के अनंत गुण और उनका रस मानो इन शब्दों में टपकता हो, वो रस इन शब्दों में झलकता हुआ दिखाई देता है। बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कही। स्वर्ण का पत्र बनाए और रत्नों से अक्षर लिखे, लेकिन फिर भी आचार्य कुंद के इन वचनों का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ऐसे बहुमूल्य वचन हैं ये। तीन गाथाएं हमने यहाँ पढ़ी है, उन तीनों गाथाओं का अर्थ भी हुआ है और थोड़ी टीका भी पड़ी है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में उपयोग नहीं है। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है। इस तरह के अविपरीत श्रद्धान करने वाला जीव, जिसको इस तरह का अविपरीत श्रद्धान होता है, वो व्यक्ति उपयोग के अलावा और कुछ नहीं करता, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं करता। आप देखिए, अधिकार का नाम दिया संवर, और हम दो तीन घंटे देख रहे हैं, तीन चार दिन जो भी हो गए हो, अपने को संवर अधिकार की चर्चा करते हुए कोई लाइन ऐसी नहीं आई जिस लाइन में कहा हो आश्रमों के रोकने का नाम संवर। चलिए, अगर स्टाइल है, माने एक तो होता है सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये काम हो रहा है, और दूसरी तरफ काम कर रहे हैं कुछ और रिजल्ट आएगा और कुछ। जो विशेष स्पेशल लोग होते हैं ना, वो लोग कुछ अलग हटके काम करते हैं। माने सीधे सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग तो बहुत होते हैं, कर्मों की नजरा करो, कर्मों को छोड़ो, आते हुए कर्मों को रोको, हम कर्मों को रोकेंगे तो संभव होगा। ये कहते हैं कि नहीं, रास्ता दूसरा। कौन सा रास्ता? कि तुम तो अपने स्वभाव को जानो, पहचानो, अपने में लीन हो जाओ, और कर्मों का जो होगा तो हो जाएगा, और जो होगा उसे संवर कहते। संवर कहते जो होगा वो संवर है। तुम अपने आत्मा को जानोगे तो बाहर में कर्मों में जो पोजीशन होगी वो संवर कहलाएगी, वो निर्जरा कहलाएगी। और जब तुम अपने स्वभाव में लीन हो जाओगे तो जो कर्मों की स्थिति अभाव रूप होगी उसे मोक्ष कहेंगे। इसका मतलब मोक्ष भी कर्मों के अभाव का नाम नहीं है। निर्जरा भी धीरे धीरे कर्मों के छूटने का नाम नहीं है। संबल भी आते हुए कर्मों के रुकने का नाम नहीं है। अरे कर्मों की दृष्टि से देखते हैं तो ये तीन दिखते हैं, अपने स्वभाव की दृष्टि से देखो तो ये तीन नहीं है, ये एक ही है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखो तो संबल किसका नाम, उपयोग उपयोग में, ये निर्जरा किसका नाम, जब उपयोग उपयोग में होता है तो निर्जरा, और मोक्ष किसका नाम, उपयोग उपयोग में। हमारा उपयोग उपयोग स्वभाव ज्ञायक आत्मा के साथ में जुड़ा, तो जैसे ही उपयोग आत्मा के साथ में जुड़ा, उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, त्रिकाली ध्रुव के साथ में जुड़ी, तो क्या होगा, ये संवर प्रकट हो गया। ये दो उपयोग, एक ज्ञान की पर्याय और एक त्रिकाली ध्रुव। ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव के साथ में जुड़े, ये पहला उपयोग में उपयोग है। दूसरा कहा था उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, और ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से निकली, किसी और में से नहीं, ये उपयोग में उपयोग। ज्ञान गुण वो भी उपयोग है और ज्ञान पर्याय वो भी उपयोग है। तो उपयोग में उपयोग एक कहकर के कहना चाहते हैं कि ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण में ही है, ये दूसरा अर्थ। और फिर तीसरा अर्थ करते हैं उपयोग में उपयोग है, मतलब वो ज्ञान पर्याय अपनी पर्याय जितनी भी है उस पर्याय में वो पर्याय है, आगे पीछे की पर्यायों में उपयोग नहीं है। ज्ञान गुण की पिछली पर्याय में वर्तमान ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है। तो वर्तमान, हाँ, जो पर्याय जिस समय उत्पन्न हुई वो पर्याय अपने में है, इसका नाम है उपयोग में उपयोग। और यदि इसको और खोल करके मैं अर्थ करूं तो कहता हूं, यदि आपको ऐसा लगता हो कि उपयोग में ये पदार्थ है, तो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं उपयोग में उपयोग है, ये पदार्थ नहीं। जिन पदार्थों को जानता है, जो पदार्थ ज्ञान रूपी दर्पण में झलकते हैं, गहराई से विचार करना, वे पदार्थ ज्ञान पर्याय में है कि नहीं है। ये पदार्थ तो ज्ञान पर्याय में नहीं है, तो फिर क्या है उस ज्ञान पर्याय में, कि उस ज्ञान पर्याय में जो ज्ञान ही ज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका नाम है उपयोग में उपयोग। वो झलकन भी ज्ञायक है, जो झलक रहा है वो झलकन भी ज्ञान का परिणाम है, उस झलकन में भी ज्ञान ही जापता है, उस झलकन में भी ज्ञान 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 यही है। माने ज्ञान पर्याय के प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में सिर्फ ज्ञान ही है, ऐसा उपयोग में उपयोग कहना चाहते हैं। ये तीनों स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है, ये सब ज्ञान पर्याय या आत्मा को छोड़कर के बाहर निकलती नहीं, ज्ञान पर्याय ज्ञान गुण के अतिरिक्त किसी और में होती नहीं, और ज्ञान पर्याय अपनी वर्तमान पर्याय के अतिरिक्त भूत भावी पर्यायों के साथ में कुछ मेल रखती नहीं। वर्तमान पर्याय यदि मति ज्ञान की पर्याय है, और आगे नेक्स्ट पर्याय यदि श्रुति ज्ञान की पर्याय है, तो वो श्रुति ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है। अवधि ज्ञान की पर्याय को मति ज्ञान की जरूरत नहीं है, पिछले समय की पर्याय में किसको जाना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय पहले तक हमारे उपयोग की पर्याय जगत के पदार्थों को विषय करती हो, और अगले समय की वही श्रुति ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को विषय करे, सेपरेट दोनों के साथ। जिस पर्याय ने अपने ज्ञायक को जाना वो पर्याय तो उपयोग में उपयोग है, और जिस पर्याय ने इन विषय के ज्ञाय को जाना वो उपयोग तो पढ़ने हैं, उस उपयोग में तो विषय पचाय है, उस उपयोग में तो पंचेंद्रीय विषय भोग वर्तते हैं। हमारा उपयोग टीवी में चला गया तो उपयोग में टीवी है ना, हमारा उपयोग लड्डू में गया तो उपयोग में लड्डू है या नहीं, तो कह रहे नहीं भाई साहब, ये तो चमत्कार है। आपको लड्डू दिखाई देने पर भी आचार्य कुंड कुंड स्वामी ये कहते हैं कि लड्डू नहीं है, केवल ज्ञान में लोकालोक है या नहीं? केवल ज्ञान में लोकालोक है? केवल ज्ञान में लोकालोक क्या? लोकालोक की झलकन है। केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लेकिन केवल ज्ञान में जाकर के जब हम किसी चीज को तलाशें तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा मान लो गाड़ी से हमें जाना है, मंदिर के लिए देर हो रही है और चाबी कहीं भूल गए, तो कहाँ मिलेगी बताओ? अरे पंडित जी इधर उधर मत करो कुछ भी, मैं 100% कहता हूँ केवल ज्ञान में तो होगी होगी। तो केवल ज्ञान में जाकर के तलाश लोगे तो वहाँ ये जाकर के देखने पर चाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। चाबी तो कहाँ है? वो झलकन तो होगी लेकिन चाबी वहां नहीं होगी। हम लोग केवल ज्ञान में बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं? बोलो। मयामी में महेंद्र भाई के घर पर कहाँ बैठे हैं? बोलो। बैठे हैं यहाँ, झलकते हैं वहाँ। तो झलकते हुए भी लोकालोक झलकते हुए भी उस ज्ञान पर्याय में तो ज्ञान ही ज्ञान है। कुछ भी झलके, अब दो दो बातें हो गई। उस ज्ञान पर्याय को देखने के दो एंगल हो गए। एक, उस ज्ञान पर्याय को देखने पर हमें ये झलक समझ में आ रहा है कि गुस्सा जानने में आ रहा है, क्रोध जानने में आ रहा है। ये ज्ञान पर्याय है और ये क्रोध पर्याय है। इस ज्ञान पर्याय में क्रोध जानने में आया, तो इस ज्ञान पर्याय का जो आकार है, ज्ञान पर्याय की जो झलकन है इसमें, ये क्रोध की झलकन बनेगी इसमें? ज्ञान पर्याय
बनेगी,
बनेगी ना। अब इस ज्ञान पर्याय में जब क्रोध की झलकन बनी तो अब इसको देखो, इस ज्ञान पर्याय को, इस ज्ञान पर्याय को देखने के दो एंगल हो गए। इस ज्ञान पर्याय में क्रोध दिखे और इस ज्ञान पर्याय में क्रोध नहीं दिख करके ज्ञान दिखे। प्रसिद्ध उदाहरण है दर्पण में झलकने वाले मोर का। सियासी जी गाथा के भावार्थ में इसी ग्रंथ में जैसे जी चावड़ा साहब ने उदाहरण दिया, यहाँ दर्पण लगा हुआ है, मिरर है और सामने से मोर झलक रहा है, ठीक हो, वो उसमें झलक रहा है और पता नहीं वो पिकॉक उस साइड था और यहाँ दर्पण में दिख रहा था, सामने पिकॉक दिख नहीं रहा, पता नहीं किधर है, उस साइड है थोड़ा सा तो दिख नहीं रहा हमारे को, इसमें दिख रहा है हमारे को। तो हमने बच्चे को कहा देखो इसमें पिकॉक है, तो हम आपसे पूछते पिकॉक है कि नहीं है? प्रतिबिंब है, लेकिन है ना, वो है पिकॉक है उसमें, देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? पिकॉक है। लेकिन अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ के बात करता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें जो पिकॉक है वो पिकॉक की पर्याय है कि मिरर की पर्याय है? वो मिरर की पर्याय है। इसका मतलब अब उस पर्याय को, जिस पर्याय में पिकॉक झलक रहा है उसे पिकॉक भी कह सकते हैं और उससे दर्पण की पर्याय होने से, मिरर की पर्याय होने से मिरर भी कह सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती है। तो आचार्य कुंद स्वामी यहाँ भेद विज्ञान कराते हुए ये कह रहे हैं कि वो जो झलकन थी, जो ज्ञान पर्याय में क्रोध झलका था, वो झलकन तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो झलकाना है, इसलिए तू ज्ञान पर्याय को ज्ञान पर्याय देख, मिरर पर्याय को मिरर की पर्याय देख। इसका नाम है मिरर में मिरर है, मिरर में मोर नहीं है। इसका नाम है उपयोग में उपयोग है, उपयोग में मोर नहीं। पता है इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इसका लाभ क्या मिलेगा? रोज चला गया, राग द्वेष चले गए, कचाई चले गई। भाई साहब अज्ञानी जीव ज्ञान में झलकने वाले जीवों की तरफ आकर्षित होता है, आकुलित होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। और ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ज्ञान में झलकने वाले जीवों से राग द्वेष नहीं करते हुए उसके ज्ञायक स्वरूप को देखता है, ज्ञानन बने को देखता है, इतनी दुखी नहीं होता। मैं आपसे कहता हूँ एक व्यक्ति किसी दुकान पर, किसी शोरूम पर एक बड़ा मिरर खरीदने गया, बहुत बड़ी साइज का था, वहाँ शोरूम से देखा लगा हुआ, बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन वहाँ दुकान पर वो और भी बहुत सारे सामान रखे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर चीज रखे हुए थे। अब यदि वो व्यक्ति उस मिरर की सुंदरता उसमें झलकने वाले चीज के आधार पर समझे तो क्या होगा? पागल है, कितना सुंदर झलक रहे, क्या है चीज यार, गजब ही है ये तो, बहुत सुंदर है। पर ऐसा देख करके उसने कहा साहब कितने का है, पैक कर दो, आप तो घर भिजवाओ। घर आ गया, खोल करके लगाया, ये क्या बात है, वहां तो कुछ और दिखाते थे, यहाँ कुछ और दिखा रहे, ये गलत माल भेज दिया। जिस व्यक्ति की दृष्टि उसमें झलकने वाले ज्ञेय पदार्थों पर है, वो व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। और जिसकी दृष्टि झलकने वाले ज्ञेय पदार्थ पर नहीं, झलकने वाले स्वभाव पर है, उस व्यक्ति को कोई दुखी कर नहीं सकता। ऐसे ही हम कहते हैं कि संसार दशा में रहते हुए, घर व्यक्ति में रहते हुए, परिवार में बिजनेस में रहते हुए, हमारी उपयोग रूपी पर्याय में न मालूम कितने प्रकार के पदार्थ झलकते हैं। कुछ पदार्थ झलकते हैं उनको देख करके कहता है बहुत अच्छे हैं, कुछ पदार्थ झलकते हैं उनको देख करके कहता है कितने खराब हैं। और हम ये कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि न अनुकूल पदार्थों पर होती है न प्रतिकूल पदार्थों पर होती है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के पदार्थ ज्ञान पर्याय में नहीं है। स्वभाव दिखता है
उसका जोर अपने अस्तित्व पर ही,
उसका जोर अपने अस्तित्व पर है, सही बात है। उस ज्ञानी व्यक्ति का जोर अपने अस्तित्व पर है, अपने ज्ञायक पर है। तो जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञान पर्याय से भिन्न अनुभव करते हैं, अभी हम भेद विज्ञान करा रहे हैं, उपयोग में उपयोग है, क्रोधाधिक में उपयोग नहीं है, ऐसा कहते हुए कह रहे हैं क्रोध करते हुए भी। देखो जो व्यक्ति शांत बैठा हुआ हो, है ना, और 10 दिन पहले क्रोध किया हुआ हो, तब तो कहेंगे भाई क्रोध क्रोध में था, वो तो गया, वो तो अवस्था चलेगी, तो ज्ञान पर्याय चल रही है तेरी, ज्ञान पर्याय नहीं, ज्ञान ही बरतता है। अब कह रहे वो नहीं, अब सुनो, एक व्यक्ति ने गुस्सा किया, गुस्सा कर रहा है, और उसके ज्ञान में भी ये बात आ रही है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। कभी कभी तो औरों को भूलता नहीं है, बच्चों को देखो ऐसा नहीं है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, देखो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बंद कर देना ये काम, गुस्सा आ रहा है, हमारे पकड़ में आता है, कहाँ पकड़ में आता है, ज्ञान में। अब ये कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं ज्ञान में क्रोध पकड़ में आने पर भी उस ज्ञान पर्याय में क्रोध नहीं, इसका नाम है उपयोग में उपयोग है। बात थोड़ी सी गंभीर है, सूक्ष्म बात है, भेजे बिल्कुल। क्रोध क्रोध में व्याप्ता है, ज्ञान ज्ञान में व्याप्ता है, वस्तु से है तो प्रदेश भेद नहीं है, वस्तु स्थिति तो ये है कि प्रदेश भेद नहीं है, वस्तु से तो उनमें न्यारा न्यारापन नहीं है, लेकिन वस्तु से भेद नहीं होने पर भी स्वरूप की दृष्टि से भेद है, क्योंकि क्रोध का स्वरूप आकुलता है और ज्ञान का स्वरूप शांति है। बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, दोनों के स्वरूप में भिन्नता है। अब जब ये क्रोध को देखता है तो आकुलित व्याकुलित होता है, और क्रोध को झलकाने वाली ज्ञान पर्याय को देखता है तो शांति का अनुभव होता है। देखो दोनों के भेदन में अलग अलग समय दिख रहा है। अब ज्ञानी धर्मात्मा भेदन किसका करे, क्रोध का वेदन करे या ज्ञान पर्याय का वेदन करे? जो ज्ञान पर्याय का वेदन करे वो समझदार, और जो क्रोध पर्याय का वेदन करे वो अज्ञानी नासमझ मूर्ख।
जैसे झलकते जैसे क्रोध के परिणाम विषयों सामने से वो जो निमित है उसको क्या बोलते हैं, भाई करते
काटते
काटते काटते तो सामने वाले को काटते एकदम बढ़िया,
क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि वो जो ज्ञान में झलक रहा है अब ये समझता है कि ये खराब है सामने वाला, उससे राग द्वेष करने लगता है। राग द्वेष करने का कोई मतलब ही नहीं है, जनक में वाले पदार्थों से राग द्वेष करने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे केवल यानी परमात्मा लोकानुक पदार्थ जलकते हुए उस जलकल से राग द्वेष करने लगे हैं तो बेचारों का क्या होगा बताओ। यही तो है, हमारे ज्ञान पर्याय में कम पदार्थ जलकते हैं, केवल ज्ञान पर्याय में ज्यादा जलकते हैं। क्या फर्क हो गया हमारी पर्याय में और केवल ज्ञान पर्याय में? जलकाने में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी वही है मिरर में। जो क्वालिटी दुकान पर थी, शोरूम पर थी, क्वालिटी वही है मिरर की, वही चीज है, वही चीज है। वहां कुछ और झलक रहा था, यहाँ कुछ और झलक रहा है। जरा केवल ज्ञान में ज्यादा झलकता है और मतिस्थ ज्ञान में कम झलकता है। अरे ऐसा नहीं है कम ज्यादा झलकन की बात, क्योंकि ज्ञान पर्याय तो उसका प्रमाण जो है ना एरिया वो उतना ही है,
स्वभाव तो वही है।
स्वभाव वही है, ज्ञान पर्याय अपने ज्ञाय प्रमाण ही है, अविभागी प्रतिष्ठित ज्यादा है, वो अलग बात है। कितना झलक रहा है, कम कचरे के ढेर को जानो और ज्यादा कचरे के ढेर को जानो, क्या फर्क पड़ना है? मतलब तो किसी से है नहीं। बोलो, मैं ये कहता हूँ मुकुंद भाई, ऐसा मानो कि किसी के भी पास रहे, मैं तो ज्यादा लोगों के नाम जानता नहीं हूँ, ऐसा समझ लो प्रणेश भाई के पास में 5 मिलियन की संपत्ति है, ठीक है, आपने उसको जाना। अब हम ये कह रहे हैं 5 मिलियन की संपत्ति है उसको जाना, और आपको बाद में पता लगा कि 5 मिलियन की नहीं 50 मिलियन की है वो आपने जाना, तो बोलो आपको क्या फर्क पड़ेगा? 5 हो तो 5 ठीक है, 50 हो तो 50 ठीक है,
मेरी तो
नहीं है ना, मेरे को क्या लेना देना उससे, ठीक है उनके पास में है मुझे नहीं मालूम, जो कुछ भी हो। अब ये कह रहे हैं ज्ञान पर्याय में ये झलके, अब कम झलके चाहे ज्यादा झलके मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो नहीं है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में ज्यादा झलकते हैं तो भी वो उससे अलिप्त रहते हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ज्ञान में कम झलकते हैं तो भी वो उससे अलिप्त रहते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि हो चाहे केवल ज्ञानी हो, आत्मा का अनुभव दोनों के एक समान एक ही क्वालिटी का होता है। मात्रा में फर्क पड़ेगा, वो लीनता का फर्क है,
कंटिन्यूटी है।
या क्षण मात्र इतना फर्क है, ये विधि बता रहे हैं। बोलो, देख करके भी अप्रभावित, जान करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे ज्ञान तो हमारा इस लाइट की तरह है, ज्ञान तो प्रकाश की तरह है, जो पदार्थों को छूटा हुआ दिखाई देने पर भी छूटा नहीं। बोलो लाइट का प्रकाश यहाँ है कि नहीं, इस पर है या नहीं? तो लाइट के प्रकाश ने इसको छुआ कि नहीं छुआ? छू करके भी नहीं छुआ, झलका है। बोलो क्या है स्थिति भाई साहब? ये लाइट का प्रकाश यदि किसी गंदगी के ऊपर पड़ता है तो प्रकाश गंदा नहीं होता। ये लाइट का प्रकाश किसी कचरे पर पड़ता है, गंदगी पर पड़ता है, तो ये लाइट का प्रकाश गंदा नहीं होता। उसी तरह से ज्ञान में भी ये पदार्थ खराब झलकते हैं तो ज्ञान मलिन नहीं होता। ज्ञान में मलिनता नहीं आती। मैं कहता हूँ दर्पण में झलकने वाले कितने गंदे पदार्थ जल के कि वो दर्पण गंदा हो जाए। ये खराब वस्तुएं झलक रही है, ये दर्पण तो खराब है। बस तुम जलकन को देखोगे, ये पदार्थ की अपेक्षा से देखोगे तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये जीव ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, सिद्धांत वाक्य है शास्त्रों का। क्या कहा? ये जीव ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। ये जलकने वाले ये और ज्ञान पर्याय में भेद विज्ञान नहीं करता। यदि ये जीव ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव नहीं करे और झलकने वाली ज्ञान पर्याय का अनुभव करे तो वेदन आत्मा का हो जाए, उसका नाम उपयोग में उपयोग है, ऐसा भेद विज्ञान करा रहे हैं। कौन सा उपयोग, कौन से उपयोग में है? ये वस्तु स्वरूप है, श्रद्धान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए जीव दुखी होता है। सारा दुख है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं दुख। उसमें जो आग जलती हुई दिखाई दे रही है मिरर में, वो तो कितना गर्म है, और बर्फ आइस जल दिख रही है, झलक रही है, तो कितना ठंडा हो गया है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, जिसमें कुछ है ही नहीं। अरे मिरर में दिखती हुई आपको देख करके पानी डालने लगे इसके ऊपर तो क्या होगा? नहीं बुझेगी ना, ऐसा ही हो रहा है। पदार्थ बाहर है, अपनी योग्यता से परिणाम कर रहे हैं ये सोचता है, यहाँ है दिमाग में मान रहा है उनको, आपको लिए क्या कुछ हो रहा है, परेशान हो रहा है, सारी परेशानियां मिट जाती है इन वेद विज्ञान से। ये वेद विज्ञान आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं, अमरचंद्र स्वामी इनके कलशों में ये बात कहते हैं, जितने जीव सिद्ध हुए हैं आज तक सब वेद ज्ञान से हुए। वर्तमान में जितने जीव सिद्ध हो रहे हैं, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वेद ज्ञान से, भविष्य में जितने जीवों को सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, एकमात्र वेद ज्ञान का प्रभाव है, दूसरा और कुछ नहीं। सिर्फ वेद ज्ञान, 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 इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ वेद ज्ञान। बराबर, वेद ज्ञान की प्रगाढ़ता होती चली जाती है, वेद ज्ञान करते हुए उसमें फीलिंग और अनुभूति बढ़ती चली जाती है, अपने आप को ज्ञायक अनुभव करते हैं, अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करते हैं। शरीर रूप अनुभव करने की बात भी तो कही है ना यहाँ, इसके नीचे वाली जो गाथा है जिसमें कहा उपयोग में कर्म नहीं है और नौ कर्म नहीं है, पहली गाथा में कहा उपयोग में क्रोध नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं, क्रोध पर्याय से ज्ञान पर्याय को भिन्न बतलाया। फिर दूसरी गाथा के अंदर इन्होंने चर्चा की कि द्रव्य कर्म और नौ कर्मों से उपयोग भिन्न है, और फिर कहते हैं इस तरह का अभिप्रीत ज्ञान, क्या कहते हैं, इस तरह का अभिप्रीत ज्ञान जब इस जीव को होता है तब ये जीव क्या करे बताओ, क्रोध करे कि नहीं करे, मान करे कि नहीं करे। हम उस मिरर को कहें यार प्लीज थोड़ा सा, जैसे रिमोट से चैनल बदलते हैं ना, ऐसे इसमें भी बदलो ना थोड़ा सा, वो वाली पिक्चर दिखाओ ना एक बार, कौन सी जो शोरूम पे दिख रही थी, क्या होगा दिखाएगा ये मिरर इस बात को दिखाएगा जो शोरूम पर पिक्चर दिख रही थी, वो कैसे दिखाएगा। तो ये कह रहे हैं उपयोग के अतिरिक्त और क्या करे, जलकन के अलावा और मैं क्या करूं, मैं किसी दूसरे पदार्थ को जलकाने का काम नहीं करता, मैं तो जलकाने का काम करता हूं, पदार्थ को नहीं, कौन से पदार्थ को, इसको जलकाऊं कि इसको जलकाऊं, ये कोई भेद नहीं है, जो सामने आता है तो जलकता है, इसमें वितराग भाव है, उस ज्ञान पर्याय में वितराग भाव है, स्वभाव की दृष्टि से देखने पर उसमें वितरागता है। केवल ज्ञान पर्याय के हमारी पर्याय ये दोनों एक समान है। देखो जब कभी हम पर्यायों की अपेक्षा से समानता की बात करते हैं, अरहंतों की पर्याय और हमारी पर्याय, केवल ज्ञान पर्याय और हमारी ज्ञान की पर्याय, दोनों की पर्याय एक समान है, दोनों की पर्याय एक समान है। नाम बोलोगे तो कहोगे एक का नाम मत्स्य ज्ञान और एक का नाम केवल ज्ञान, लेकिन कहते भेद नहीं है। क्यों नहीं है भेद? क्योंकि उनकी ज्ञान पर्याय में ज्ञान गुण में से भी ज्ञान पर्याय निकल रही है और हमारे ज्ञान गुण में से भी ज्ञान पर्याय निकल रही है। उनकी ज्ञान पर्याय भी निकलते हुए उनके आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के बराबर ही है। उनकी ज्ञान पर्याय का आकार क्या है?
न्याय
प्रमाण, बराबर। और हमारी ज्ञान पर्याय का आकार क्या है? क्या है समान अंतर बताओ? उनके ज्ञान गुण से ज्ञान पर्याय निकल रही है, हमारे ज्ञान गुण से ज्ञान पर्याय निकल रही है। उनकी ज्ञान पर्याय ज्ञायक प्रमाण है और हमारी ज्ञान पर्याय भी ज्ञायक प्रमाण है। उनकी ज्ञान पर्याय भी झलकाने का काम करती है, हमारी ज्ञान पर्याय भी झलकाने का काम करती है। उनकी ज्ञान पर्याय पदार्थों को झलकाते हुए भी उससे अनटच रहती है और हमारी ज्ञान पर्याय भी जीवों को झलकाते हुए उससे अनटच रहती है। अंतर तो बताओ क्या है? फिर अंतर ही नहीं दिखता है हमारे को, तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर तो तेरी मान्यता का है, अंतर तो तेरे अभिप्राय का है, और उस अभिप्राय के बदलने को सम्यक दर्शन कहते हैं। कुछ नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, भरोसा चाहिए, चिंता करता 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 नहीं, भरोसा चाहिए कि पढ़ने मेरा हस्तक्षेप नहीं है, भरोसा चाहिए कि कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता, भरोसा चाहिए कि मेरा सुधार बिगाड़ करना पढ़ने चलता नहीं, इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन, उपयोग में उपयोग है, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। ये बात कही है, मैं तो जरा मूल टीका में क्या कहते हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, कैसे हुई एक वस्तु की दूसरी वस्तु, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, रसगुल्ले की बात करें और आम का स्वाद आए तो कैसे आए, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, खाओ रसगुल्ला और स्वाद आए आम का, कैसे बनेगा बताओ, वस्तुएं जारी जारी है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, इस वस्तु की ये वस्तु नहीं हो सकती, जो वस्तु अपने रूप है वो वस्तु अपने रूप ही रहेगी, ये प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, दुनिया में कोई वस्तु अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, कुछ भी कर लो आप अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगी, ज्ञान अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, श्रद्धा अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगी, चारित्र अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, ज्ञान पर्याय जानने का काम करेगी, श्रद्धा पर्याय अपनेपन का काम करेगी, चारित्र पर्याय दीनता का काम करेगी, बस जो पर्याय का जो काम है वो पर्याय वो ही काम करेगी, चाहे मिथ्या दृष्टि की हो, चाहे सम्य दृष्टि की हो, चाहे मन पर्याय ज्ञानी की हो, चाहे केवल ज्ञानी की हो, चाहे नरक में हो, चाहे निरोध में हो, चाहे मोक्ष में हो, कहीं भी हो, सब समानता की बात कर रहे हैं हम, कैसा ज्ञान करा रहे हैं बोलो, ये भेद विज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि ये जो अंतर दिखता है ये अंतर भेद विज्ञान नहीं करने की वजह से दिखता है, जितना अंतर है ना ये सारा का सारा अंतर कैसे दिखता है, ये नहीं साहब ये गुस्सा कर रहे हैं, नहीं साहब ये ऐसे हैं, नहीं साहब ये ऐसे हैं, नहीं साहब देखो ये तो इसको जान रहे हैं, नहीं साहब ये टीवी देख रहे हैं, नहीं साहब ये मोबाइल सुन रहे हैं, नहीं साहब ये कर रहे हैं, किस किसके ज्ञान पर्याय में क्या क्या झलक रहा है, तू गिरियों के साथ में भेद नहीं करता इसलिए तुझे भेद विज्ञान नहीं होता, अंतर नहीं जानता, अब कैसे तू कर भेद विज्ञान, यदि तू भेद विज्ञान करे तो कोई अंतर ही नहीं, सब एक समान है, सर्व जीव के सिद्ध सम ये समझे थे सार, सर्व जीव के सिद्ध सम, क्या बात कर रहे हैं, कोई अपूर्व बात कह दी है, अद्भुत बात कह दी है, कोई अंतर नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा हमारे कोई कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहते कहते हो आप, कोई अंतर नहीं, तुम भेद विज्ञान करोगे तो अंतर नहीं है, और भेद विज्ञान नहीं करोगे तो पर्याय अपेक्षा से देखने पर तो अंतर ही अंतर दिखाई देंगे, और जब अंतर दिखाई देंगे तो सब छोड़ेगा अपना और क्या करेगा, हे भगवान ये ऐसा और ये ऐसा और इसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, स्वभाव दृष्टि से देखने पर राग द्वेष शांत हो जाता है, स्वभाव दृष्टि से देखने पर मेरा स्वरूप ज्ञायक स्वरूप दिखाई देता है, भेद नहीं दिखता मेरे को, इसने मुझे गाली दी और इसने मुझे प्रशंसा की, इसने मेरे साथ ऐसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तू जब भेद विज्ञान करेगा तो तुझे जलकर मात्र दिखाई देगी, कोई अंतर नहीं दिखेगा, हमें यदि चेहरा देखना है तो छोटा दर्पण हो या बड़ा दर्पण बोलो क्या फर्क पड़ता है, हमें यदि अपने स्वभाव को देखना है, नहीं सब केवल ज्ञान में तो आत्मा अच्छा दिखता होगा, केवल ज्ञान में आत्मा कैसा दिखेगा, मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा कैसा दिखेगा, भाई साहब चेहरा देखना है ना अपना, तो मति शुद्ध ज्ञान में ज्ञायक को देखो चाहे केवल ज्ञान में ज्ञायक को देखो, केवल ज्ञान बड़ा मिरर है और मति शुद्ध ज्ञान छोटा मिरर है, लेकिन अपना चेहरा देखने के लिए दोनों एक समान है, लगता है बड़ा बड़ा बड़ा, बड़े में तो ज्यादा दिखेगा, बड़े में ज्यादा क्लियर दिखेगा, बड़े में कोई चेहरा सुंदर दिखेगा, जैसा होगा वही तो दिखेगा, तो मतेश्वर ज्ञान के माध्यम से जब अपने ज्ञायक को देखता है तो ज्ञायक कैसा दिखेगा, कि वैसा ही दिखेगा जैसे केवल ज्ञानियों को अपना ज्ञायक दिखता है, ऐसा इसलिए कहते हैं फिर से समान ये अनुभव करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। इसलिए कहते हैं सिद्धों में और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव में कोई अंतर नहीं, एक समान है, स्वभाव सम्मुख ज्ञान दोनों का है बराबर, चाहे सिद्ध परमात्मा हो चाहे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो चाहे मुनिराज हो, जो अंतर दिखता है वो अंतर ऊपरी ऊपरी अंतर है, जो अंतर दिखता है ये मिरर की साइज का अंतर है। बोलो अब मिरर की साइज देखना कि चेहरा देखना, तुम्हें क्या करना है? मैं कहता हूँ यदि हमें मार्केट में $50 की कोई चीज खरीदनी है, $50 की कोई चीज खरीदनी है हमारे को, तो हमारी जेब में $100 हो या $5,000 हो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, हमने $50 की चीज खरीदनी है, अब 100 होंगे तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, और नहीं साहब $1,000,000 है तो होगा, चीज तो $50 की है। बताओ मेरे को। अच्छा मैं ये कहता हूँ जो चीज मार्केट में समझ लो आप कोई भी चीज, जैसे आईपैड की बात करें, मान लो $600 का आता है ये आईपैड, $600 का है, तो यदि कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति $600 का आईपैड खरीदे तो उसकी क्वालिटी हल्की आएगी, और एक मिलियनर $600 का आईपैड खरीदे तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये तो कह रहे हैं और क्या है, कितनी भी बात यदि हमारे समझ में आ जाती है तो भेद विज्ञान हो जाता है, कितना मोटी मोटी बात है बोलो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्या? ये जो चीज है ये दोनों के पास एक समान, जिसमें झलक रहा है वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है या वो केवल ज्ञान है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो झलक रहा है वो दोनों के लिए बराबर है। जो ज्ञायक झलकता है, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो केवल ज्ञानी के लिए जैसा ज्ञायक भगवान आत्मा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के लिए भी वैसा ही भगवान आत्मा है। इसलिए घर में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अनुभव कर लेते हैं सिद्ध समान सुख का, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उस आनंद के लिए मोह छोड़ने की जरूरत है, भेद विज्ञान करने की जरूरत है। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे जो निज में समाये रहते हैं, क्या कहा बोलो, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे नहीं मोर किसी से कर दे। मैं भेद विज्ञानी ज्ञानी धर्मात्मा जीव, देखो भैया घर में रहते हुए भी भेद विज्ञानी दुखी और जंगल में रहते हुए भी जिसे भेद विज्ञान नहीं है वो दुखी, महिमा भेद विज्ञान की है, भेद विज्ञान की महिमा के लिए समर्पित अधिकार है, इस अधिकार में भेद विज्ञान के गीत गाते हैं, भेद विज्ञान की महिमा बतलाते हैं, जिसके हृदय में भेद विज्ञान है तो सिद्ध बनने का पात्र है, वो क्वालिफाइड है, और जिसके हृदय में भेद विज्ञान नहीं है उपवास करता है, व्रत करता है, प्रतिज्ञा पालन करता है, बाह्य चारित्र का पालन करता है, कठोर आचरण करता है, किसी कमंडल अपनाता है और न मालूम क्या क्या हो जीवन उसका कैसा दिखाई देता है, अनुव्रतों महाव्रतों का पालन करता है, समिति मुक्ति आदि का पालन करता है, लेकिन भेद विज्ञान नहीं है तो क्या होगा? भेद विज्ञान नहीं है मतलब अपने आप को मुनि मानता है, वेद विज्ञान नहीं है का मतलब क्या मानता है अपने आप को? इसलिए कहते हैं सुनो मुनिराज को तुम भी मुनिराज मत मानो, क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि तुम एक को देख करके कहते हो मुनिराज है, दूसरे को देख करके कहते हो आचार्य है, एक को देख करके कहते हो अरिहंत है, एक को देख करके कहते हो सिद्ध है, और ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सब आत्मा की अवस्थाएं है ऐसा नहीं। करो वेद विज्ञान, कैसा वेद विज्ञान करें कि उनकी जो वर्तमान अवस्था दिखाई दे रही है वो अवस्था और ज्ञायक भगवान आत्मा इन दोनों में भेद करो, तो एक तरफ वो मुनि अवस्था और एक तरफ ज्ञायक, इन दोनों का मिश्रण है, दोनों साथ में मिलकर के ना बाहर में दिखने वाली मुनि अवस्था और अंदर में त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा, इन दोनों के सम्मिलित अवस्था का नाम है मुनि। अर्का आचार्यों को देखो, उपाध्यायों को देखो, तो कौन ये आचार्य दशा, उपाध्याय दशा और ये इधर त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा, इनकी अवस्था का नाम है आचार्य उपाध्याय। पूरे वरंतों को देखो किताब, ये परम औदारी शरीर वाली और ये सब जो दशा दिख रही है ये, और इधर त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा। और सिद्धों को देखो, ये सिद्ध पर्याय और ये त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा, उनका इधर वाले के ऊपर हाथ लगा दो तो ये क्या दिखता है, ज्ञायक 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 ज्ञायक, ये ज्ञायक। जैसे वेद विज्ञान किया हमने, उसको अलग किया और इसको अलग किया तो एक रूपता दिखाई दी, और जैसे वेद विज्ञान नहीं हुआ तो एक मुनि दिख रहे हैं, एक आचार्य दिख रहे हैं, एक सपत दिख रहे हैं, साधु दिख रहे हैं, परिग्रह दिख रहे हैं, एक मित्रदृष्टि दिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि दिख रहे हैं, एक पापी दिख रहे हैं, पुण्यात्मा दिख रहे हैं, धर्मात्मा दिख रहे हैं। वेद विज्ञान की महिमा है भाई साहब, ये वेद विज्ञान बहुत जबरदस्त चीज है। ये इस वेद विज्ञान की बात करते हैं, देखो अभी मैंने ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से बात की है, कुंडलों की अपेक्षा से बात कर लो, संयोगों की अपेक्षा से बात कर लो, करो वेद विज्ञान। कैसा वेद विज्ञान करें यदा, ये किसके साथ करो वेद विज्ञान। एक चीज दिख रही है इसमें, ये मोबाइल है, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डर है, जो भी है, एक तरफ ये चीज दिख रही है, दूसरी तरफ देखने पर ये दिखता है पुद्गल स्कंध। दो चीजें एक ऐसे टाइम है ना, यही चीज, इसको देखने के दो एंगल हो गए ना, एक तो देखा पुद्गल स्कंध और दूसरी तरफ देखा मोबाइल। अब इसे देखो, ये क्या दिखेगा बोलो, पुद्गल स्कंध और दूसरी तरफ शक्ति, क्या कहते हैं आप लोग रखने की,
घोड़ी,
घोड़ी, एक तरफ कहेंगे घोड़ी है रखने की और दूसरी तरफ कहेंगे पुद्गल स्कंध है, दोनों बातें कही जा सकती है। अब हमने कहा जब तुम इसको घोड़ी देखते हो, जब तुम इसको मोबाइल देखते हो, जब तुम पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप में देखते हो तो तुम्हारे को राग द्वेष उत्पन्न होते, और जब तुम इन पदार्थों को देखते हुए इनको पुद्गल स्कंध मात्र देखते हो तो न राग होता है न द्वेष होता है। बोलो, इस पदार्थ को देखने पर, इस पदार्थ के झलकने पर करो ना वेद विज्ञान, ये क्या चीज है। भोजन में कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज खराब लगती है, और मुनिराज जब आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वे आहार जानते हैं उसको मात्र। खीर क्या है, बोले आहार है। लड्डू क्या है, बोले आहार है। मेवा क्या है, बोले आहार है। आम क्या है, बोले आहार है। अब क्या करें महाराज, आपको आम पसंद है कि नहीं है, आपको लड्डू पसंद है कि नहीं है। न हमें लड्डू दिखता है, न हमें आम दिखता है, न हमें खीर दिखती है, न हमें हलवा दिखता है, हमें तो आहार दिखता है। हम ग्रहण करते हैं शुदा रूप, शुदा वाला को दूर करने के लिए पेट में डालते हैं, बस इतना सा काम। वो प्रयोजन देखो आपको, कुछ भी हो, कभी कभी देखो जब हम ऐसी अभेद दृष्टि से देखते हैं तो क्या चमत्कार होता है। मार्केट से आए, शोरूम से, दुकान से, बाजार से, और आने पर हमने कहा एकदम बहुत तेज भूख लग रही है, ये क्या खाओ, जो हो डाल दो, क्या हुआ, मतलब बहुत तेज भूख लग रही है कि क्या खाओगे, क्या बनाओ, ये कुछ नहीं, जो हो डाल दो। ये जो हो डाल दो क्या चीज है, कि आप उसमें भेद नहीं करते, आप उसको पुद्गल को सिर्फ या निशान जो कुछ भी सामने है उसको पेट भरने का साधन समझते हैं। नहीं होती है ऐसी प्रवृत्ति हमारी, ऐसा नहीं देखते हम। जब हम उसे सिर्फ पेट भरने का साधन मात्र देखते हैं तो राग द्वेष नहीं होता, और जैसे ही हम पेट भरने का साधन नहीं देख करके हमारी दृष्टि गई, ये क्या है, ये क्या बना है, ये कोई खाने की चीज है क्या, ये तो बहुत अच्छा बना है, राग द्वेष। हम यदि वेद विज्ञान अपनाते हुए उन पुद्गलों को पुद्गल जानेंगे, चेतन को चेतन जानेंगे, ज्ञायक को ज्ञायक जानेंगे, राग को राग जानेंगे और कषाय को कषाय जानेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती। अब करो मुझे दुखी, बोलो, दुखी होने का उपाय है, करो मुझे दुखी, कैसे कर सकते हो आप, सिखाओ आपको क्या क्या सिखाया, कोई बात नहीं मैं जानता हूँ कुछ गलत ठीक है और जानकर जाए थे कुछ भी सिखाओ कुछ भी करो आप सामने से ऐसे कराओ मेरे क्या फर्क पड़ता है, ये उसको देखता है तो दुखी होता है, सारी प्रॉब्लम यहां से खड़ी होती है। एक बालक अपने घर पर अपने घर की खिड़की खोलता था और सामने रोड क्रॉस करके किसी का मकान था और वहां एक व्यक्ति इस बालक को देख करके चिढ़ाता था और ये दुखी होता है। अब क्या करें बोले, इसका दुख दूर करने के लिए क्या करें, समझदार लोग क्या कहेंगे उसको, नुकन भाई अपना बच्चा ही दुखी होता है रोता है वो मुझे चिढ़ाता है परेशान करता है ये रोता है बच्चा, आप क्या करोगे बोलो, खिड़की बंद कर मत देख उसकी तरफ, तू देखता है क्यों है, ठीक है ये ना। और यदि वो ऐसा करता है तो फिर कितनी तकलीफ होती है, सामने वाला ऐसे कर रहा था ऐसे अंगूठा माने उसके अंगूठे में दुख भरा है जिससे तुम दुखी हो रहे हो, वो दुख कहाँ है बताओ मेरे को, दुख तो हमारे अभिप्राय में है ना, दुख तो हमारी मान्यता में है ना, दुख तो हमारे चिंतन में हमारी सोच में है ना, तुम मत देखो उसको। देवलाली में मैंने पुरानी बात होगी लगभग कार्तिक माह के अष्टानी ग्रह की बात थी, करणानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि ये विषय मुझे दिया गया, चार विद्वान थे अष्टानिका में, चारों का अलग अलग विषय था, एक का प्रथमानुयोग से वितराग था, एक से चरणानुयोग से वितराग था, एक से करणानुयोग से वितराग था, एक द्रव्यानुयोग से वितराग था। तो पहले मुझे कहा था प्रथमानुयोग से वितराग था, फिर उनको करणानुयोग वाला कोई विद्वान नहीं दिखा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं करणानुयोग से वितराग था की सिद्धि आप लोग, मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रकरण चालू किया एक कर्म का, बहुत सारे प्रकरणों से वितरागता की बात की, मैंने कर्म की बात करते हुए ये कहा कि कर्म का उदय आता है तो दुखी क्यों होता है, अब कर्म का उदय आएगा पाप कर्म का उदय आएगा तो दुखी होगा ना, सुनो जो पाप कर्म का उदय आ रहा है उसमें तुम दुखी हो रहे हो। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक बात बताओ महेंद्र भाई, कल्पना करो ऐसा सब अपने अपने बारे में कि मेरे यदि अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो, अपयश कीर्ति कर्म के उदय में क्या होगा, बहुत निंदा होगी बहुत बुराई होगी बहुत बहुत अपयश चल रहा है मेरा, अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो रहा है तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी,
अज्ञान से होगी,
अज्ञान से होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ आपकी बहुत निंदा हो रही है पूरे समाज में लेकिन आपको पता नहीं है तो आपको कितनी तकलीफ होगी, क्या समझ में आया बात, बाहर में बहुत निंदा हो रही है हमारी और हमें पता नहीं है तो हमें कितनी तकलीफ होगी, बोले बिल्कुल नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि तेरे को पता लगता है तो तू दुखी होता है, तू देखना बंद कर तेरे को दुख नहीं है, पाप कर्म का उदय आता है उसको उसमें आने दे, तू उसको देखना बंद कर दे तेरे को तकलीफ नहीं, तू देखता है तो दुखी होता है, वो सामने वाला चिढ़ाता है तू देखता है तो दुखी होता है, तू अपने दरवाजे बंद रख तू उसे देखना बंद कर तेरे को तकलीफ नहीं। ये है यहाँ ये सिखा रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी, ये वेद विज्ञान सिखा रहे हैं, मत देखो दूसरों की तरफ, आकर्षित मत हो प्रभावित मत हो, झलकने वाले गेहूं से प्रभावित होंगे तो सुखी दुखी हुए बिना नहीं रहोगे, ये सुखी दुखी होने का हेतु है। दुनिया का हर व्यक्ति जो सुखी दुखी होता हुआ दिखाई देता है उसके पीछे एक ही कारण दिखाई देता है, क्या ये होते प्रभावित होता है इस अनिष्ट और प्रभावित, और ये इस अनिष्ट के भाव वाले को मैं कहता हूँ दुष्ट, ये इष्ट है ये अनिष्ट है और ये दुष्ट है, इष्ट माने अच्छा अनिष्ट माने बुरा, तो ये अच्छे और बुरे की जो कल्पना है दुष्ट कैसे कहते हैं, दु और इष्ट दो शब्द दुष्ट में दु इष्ट दुष्ट है ना, तो इष्ट माने अच्छा लगना और दु का अर्थ खोटा लगना, तो कुछ खोटा लग रहा है और कुछ अच्छा लग रहा है इसका नाम दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, दुष्ट जानते हैं गुजराती
दुष्ट
है, कैसा लगता है बोलो, ये बहुत दुष्ट है। ये क्यों दुष्ट है? कि दूसरे को इस तरह से मानता है, इसलिए दुष्ट है। भाई साहब दृष्टि बदलनी पड़ेगी, चिंतन और सोच बदलना पड़ेगा। बोलो अन्य पदार्थ, जगत के पदार्थ मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ है, अन्य पदार्थों से आय मानता है। आय, आय मतलब इनकम, इनकम लाभ, आय। आपकी आय कितनी, आय कितनी है, आमदनी कितनी है, ऐसा होता है ना। तो अन्य पदार्थों से आय मानता है, माने लाभ मानता है, वो अन्याय है। अन्य आय, अन्य से लाभ माने वो अन्याय करता है। क्या वेद विज्ञान सिखा रहे हैं, कौन सी कला सिखा रहे हैं यहाँ? प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो हो रहा है, ये काम तो हो रहा है। ज्ञान पर्याय ज्ञान को ही जान रही है, ज्ञान पर्याय ये को नहीं जानती है। ज्ञान पर्याय और ये दोनों भिन्न भिन्न है, क्रोध और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न है। क्रोध और ज्ञान को दोनों को अलग अलग नहीं करना है, दोनों अलग अलग ही है। काम कितना सरल हो गया है, माने काम कुछ भी नहीं करना है, सब आपको तो मोहर लगानी है, बस इतना सा काम करना है। काम तो हो गया, आप मोहर लगाओ और सब आपका श्रेय आपको मिल जाएगा, सब सम्मान आपको मिलेगा। जितना सा काम करना है, काम सब हमने किया है, बढ़िया, आप चिंता मत करो। आप तो सिर्फ घोषणा कर देना, आपने घोषणा की और नाम हो गया आपका कि इसने ये काम किया। नरेंद्र मोदी कितना काम करता है, आपके यहाँ ओबामा कितना काम करता है, बताओ कितना काम करता है, कितने बिल्डिंग बनाता होगा, कितने पत्थर उठाता होगा, कितना वजन उठाता होगा, क्या करता होगा? कुछ भी नहीं। काम करते हैं दूसरे, साइन करता है, ये बिल पास करता है और करता है, इसके पास में सारा प्रस्ताव आता है, योजनाएं बनकर के आती है, बनाने वाले दूसरे, काम करने वाले दूसरे, इतने क्या किया? ओके, इतना सा काम, तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे को सारा श्रेय मिल जाएगा, सब स्वीकार करती। तो क्या करना है? ज्ञान को अलग करो, पदार्थों को अलग करो, शरीर को अलग करो, आत्मा को अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इनको भिन्न भिन्न करो। यार क्या अकॉर्डिंग में उलझा दिया हमारे को, फिर सारे छठे छठाए हैं, सब अलग अलग है। इस दुनिया में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला हुआ नहीं है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं है, ये वाक्य दिया है। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की नहीं है, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में मिली नहीं है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु हो सकती नहीं है। तो क्या करें साहब, अब क्या करें बताओ? कुछ नहीं है, तो जैसा उसको वैसा जानना है। देखो जो जैसा नहीं है उसको वैसा जानने में बहुत कठिनाई होगी, वो इसको आसान लगता है, और जो जैसा है उसको वैसा जानना कितना आसान है। मोबाइल को मोबाइल जानना है, आईपैड को आईपैड जानना है, इसको ये जानना है, इसको ये जानना है, जो जैसा है उसको वैसा जानना है, आत्मा को आत्मा जानना है, शरीर को शरीर जानना है, शरीर बहुत कठिन काम है। अरे मोरे कितना सरल है, डब्बे पर लिखा हुआ है, ये चीनी का डब्बा है, ये चाय का डब्बा है, ये मसाले का है, ये नमक का है, ये मिश्री है, ये सौंफ है, ये जीरा है, ये धनिया है, ये हल्दी है, ये सब डब्बों के ऊपर लिखा हुआ है, चीनी का बहुत कठिन है। अरे सब सेपरेट है, सब सेपरेट है, दुखाई की परवाह कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है तू? नहीं साहब ये क्या है, तो बहुत भारी काम है साहब। भारी काम है, भारी काम तो ये होगा कि नमक वाले को मिर्ची का कहे, मिर्ची वाले को उसका कहे, किसको कुछ जाने किसको कुछ जाने, तो उलझ जाएगा तू। भारी काम कब होगा बताओ? भारी काम तब ये होगा जब नमक के डब्बे पर मिश्री लिखा हुआ हो, मिर्ची के डब्बे पर हल्दी लिखा हुआ हो, तो भारी काम होगा। अरे एक दूसरे में मिले हुए हो तो भारी काम है, हम मिले ही नहीं है। अब मुझे ये बता तुझे काम क्या है, वजन किस बात का है माथे पर? एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं है, वजन क्यों रखते हो माथे पर? माथे पर वजन का काम ही नहीं है, निर्भर कर दिया है यहाँ पर। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती क्योंकि दोनों वस्तुओं के प्रदेश भिन्न है, उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, एक सत्ता ही नहीं है उनकी, दोनों वस्तुओं की सत्ता अलग अलग है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, क्या जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब उसमें परस्पर में आधार आधे संबंध भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठान रूप ही आधार आधे संबंध होता है। कौन किसके आधार से रहे, ज्ञान पर्याय ज्ञाय के आधार से रहती है, ज्ञान पर्याय से ज्ञाय पकड़ में आता है और ज्ञान पर्याय ज्ञाय के आधार से रहती है। एक आधार दूसरी आधे, दोनों में आधार आधे संबंध है, दोनों तरह से बात की जा सकती है। ज्ञान पर्याय आधार और ज्ञाय भगवान आत्मा आधे, ज्ञान से ज्ञाय पकड़ में आता है, इसलिए ज्ञान पर्याय आधार है, भगवान आत्मा आधे। ये संबंध जिसमें है बोले वो उसका है, और ये संबंध जिसका नहीं है बोले वो उसका नहीं है। अब बताओ पर के साथ में हमारा आधार आधे है या नहीं है, बोले नहीं है, तो तुम पर से भिन्न हो ये अनुभव करो। देखो अंतिम ज्ञानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, ये सब सारा विस्तार इसी का किया है अपन ने पूरा एक घंटा। ज्ञान क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व, मैं कहता हूँ ज्ञान पर्याय को ज्ञायक से अलग करके दिखाओ, सर्व अलग कैसे करोगे, नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकती। कैसे अलग होगा, सूर्य से सूर्य की किरण को कैसे अलग किया जा सकता है, दीपक से दीपक के प्रकाश को कैसे अलग किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करने लगे, यहाँ ठंड बहुत लग रही है और बाहर धूप आ रही है, थोड़ी सी ले आओ ना बाहर से अंदर, बाहर की सनलाइट को अंदर ला सकते हैं, उठा के डब्बे में भर के ला सकते हैं, नहीं ला। यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, उसका अभिन्नत्व है, इसलिए ज्ञानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित देह ज्ञान ज्ञान ही है। और क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित देह क्रोधादि क्रोधादि में ही है, ज्ञान ज्ञान में है, क्रोध क्रोध में है, आत्मा आत्मा में है, विकार विकार में है, स्वभाव स्वभाव में है, मैं विकार नहीं और विकार मेरे में नहीं। जैसे ये भेद ज्ञान होता है, ये ज्ञान भगवान आत्मा सुखी हो जाता है। सुख प्राप्त करने की दिशा में ये प्रथम चरण है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की दिशा में, मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की दिशा में ये प्रथम चरण है जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं। इस प्रकार का भेद ज्ञान यदि हमारे जीवन में होगा तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब जहाँ सिद्धों की अस्थि है वो हमारी भी बस्ती होगी। तो इस प्रकार वेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान को ज्ञान पर्याय रूप अनुभव करते हुए हम 43 दिनों के भगवान आत्मा की अनुभूति पूर्वक अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, क्योंकि मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है, बाकी तो दिन बीतते जा रहे हैं, वर्ष बीतते जा रहे हैं, बीत जाएंगे, एक दिन और बीत गया, एक दिन और बीत गया, एक बरस और बीत गया, एक साल और गिर गया, ऐसा है कि नहीं। तो गिरते चले जाएंगे, जीवन निकलता चला जाएगा, जीवन की सार्थकता ज्ञायक को जानने में है। हम सभी अपने जीवन को अपने ज्ञायक के अवलंबन पूर्वक देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति पूर्वक सफल और सार्थक करें, इसी मंगल भावना के साथ।